आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम आयु कपिल है और मैं कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 की किताब राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन भाग 3 के इकाई 3 के अध्याय 5 को। अध्याय 5 का नाम है न्यायपालिका। तो शुरू करते हैं। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्यायालय के लिए जा सकते हैं, जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बच्चों, यहाँ शुरुआत इस तरह ये करते हैं, ये बताते हैं कि न्यायपालिका क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए। ये कानून बनाती है और हमें हमारी ये एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन कानूनों का उल्लंघन ना करें, और जो जिस भी किस्म का किसी भी भारतीय नागरिक को जब न्याय चाहिए तो तब भारतीय न्यायपालिका पर ही उसको दरवाजा खटखटाना होता है, और न्यायपालिका बिना किसी सरकार के दबाव के न्याय करती है। ये स्वतंत्र होती है। हमारी भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी जो सरकारी शासन है वो इस पर दबाव नहीं बनाएगा किसी भी प्रकार का। ये स्वतंत्र है, ये अपने नियम कानून उसूल निर्णय स्वतंत्रता से ले सकती है। अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है, और जो हमारे शहरों में अदालतें होती हैं और जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, क्या इन सबके बीच कोई संबंध है, और अगर है तो वो क्या। तो पहला प्रश्न आता है कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, तो ये पढ़ेंगे हम। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका किसी भी प्रकार का अधिकार रखती है कि वो किसी भी मुद्दे पर अपना निर्णय दे सकती है और एक कानून बना सकती है। तो वो मोटे तौर पर किन किन भागों में बांटा गया है न्यायपालिका का काम, वो देखेंगे हम। पहला है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। विवादों का निपटारा करती है न्यायालय। जो न्यायालय है वो या तो अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद है, किसी नागरिक के बीच आपस में कोई विवाद है, या सरकार और आम नागरिकों के बीच कोई विवाद है, जिनके भी बीच विवाद है वो न्यायालय में ही निपटता है। वो ये मुहैया कराती है पूरी क्रियाविधि, पूरा प्रोसेस के उनके बीच का विवाद हल हो सके। दूसरा इसका काम होता है न्यायिक समीक्षा का। ये क्या है? संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ ये बता रहे हैं कि जो संविधान की व्याख्या का अधिकार है मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास, जो भी संविधान की व्याख्या हुई है वो न्याय को ध्यान में रख के हुई है, और न्यायपालिका के पास ही मुख्य अधिकार है एक रूप से संविधान की व्याख्या का। यानी जो न्यायपालिका है वो बता सकती है कि संविधान में क्या कह रहा है और संविधान में क्या लिखा है। ये न्यायपालिका जो है इसकी व्याख्या कर सकती है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के खिलाफ है और संविधान में लिखे गए नियमों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को तुरंत रद्द कर सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा करती है कि जो भी नए कानून बन रहे हैं क्या वो संविधान के दायरे में है, है तो ठीक है, नहीं है तो ये रद्द कर सकती है। तीसरा काम होता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था जो खेतीहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये लिया गया है पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। अब तीसरा जो न्यायालय का काम है वो है कानून की रक्षा होती रहे और जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना हो और उनके उनसे मौलिक अधिकार उनसे छीने ना जाएं। जैसा कि आपने कक्षा 7 की किताब में पढ़ा था कि जो हाकिम शेख थे वो खेतीहर थे और वो ट्रेन से घिरकर घायल हो गए थे, पर किसी भी अस्पताल ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का जब दरवाजा खटखटाया तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार मिलता है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। तो उन्होंने फिर पश्चिम बंगाल सरकार को कहा, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के थे, कि आपको इन्हें मुआवजा देना होगा जो भी अभी तक इनका नुकसान हुआ है अस्पतालों की लापरवाही की वजह से, और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हर राज्य में जो प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी रूपरेखा दोबारा तैयार हो ताकि किसी भी इंसान को जब आपात स्थितियों में अपना इलाज चाहिए हो तो उसे एकदम मुहैया कराया जाए। तो इस तरह जैसे इस उदाहरण में हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की मौलिक अधिकार की रक्षा की, तो यही काम न्यायालय करता है, कानून की रक्षा करना और लोगों के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन अच्छे से होता रहे ये देखना। इधर चित्र प्रस्तुत है, इसमें लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है बच्चों, और इसके बारे में लिखा है कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में, और इसी दिन हमारा देश गणतंत्र भी बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले हमारा कोर्ट था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जब अंग्रेजी शासन था, तो 1937 से 1949 तक की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। पहले ये जो न्यायालय था ये संसद भवन के अंदर जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस है उसमें हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। तो ये कहते हैं कि 1968 में इस इमारत को स्थानांतरित किया गया था यहाँ पे, कहाँ से? संसद भवन से। अब हम देखेंगे जो अगले प्रश्न पे गिवन है, अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। इधर विवाद की किस्म गिवन है और इधर उदाहरण। तो पहला है, जैसा कि पहला लिखा है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद। तो इसका उदाहरण हो सकता है कि शक्तियों के प्रयोग को लेकर हो सकता है इसमें कोई भी उदाहरण, और दो राज्यों के बीच विवाद हो सकता है जैसे नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, दो नागरिकों के बीच विवाद हो सकता है कि संपत्ति को लेकर शायद, और ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, इसमें हमने पिछले अध्याय में जैसे पढ़ा था कि जैसे पटरी पर जो दुकान लगाने ठेली फेरी लगाने वालों के खिलाफ कानून बना था तो वो हम यहाँ ले सकते हैं क्योंकि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उनके जो एक तरह से मौलिक अधिकार है उन्हें भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है तो वो एक तरह से उल्लंघन हो रहा था क्योंकि इसमें ना वो खुश थे और ना ही आम नागरिक, क्योंकि आम नागरिकों को भी उनसे सहायता मिलती थी। तो यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। अब आपको ये कल्पना करने के लिए कह रहे हैं कि आप सोचिए आप एक ऐसे ताकतवर नेता है जिसने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, परिवार की जमीन पर, और आप जहां रहते हैं वहां का नेता वो इतना ताकतवर है कि वो जज को, न्यायाधीश को भी पद से हटा सकता है या उसको तबादला करके किसी और जगह भेज सकता है। अब आप इस मामले में अदालत जाते हैं अपनी याचिका दायर करने, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपकी जमीन पे उस नेता ने कब्जा कर लिया, तो न्यायाधीश जो है वो भी नेता की हिमायत कर आपके सामने, यानी अब आपके पास और कोई चारा नहीं है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। तो यहाँ पे जो नेता था उसका नियंत्रण था न्यायाधीश पे, तो इसलिए वो भी आपके सामने नेता की ही हिमायत कर रहा था और आपका पक्ष नहीं ले पा रहा था। तो ये जो है, क्योंकि नेता न्यायाधीश पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना करें, इस वजह से स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलअंदाजी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो इस तरह की किसी भी दखलअंदाजी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। हमारा संविधान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी भी ताकतवर या पैसे वाले समुदाय या एक नागरिक जो है वो न्याय को इन्फ्लुएंस करे, वो उसकी वजह से जो निर्णय है उसमें बदलाव हो उसके पक्ष में, ये संविधान के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संविधान की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो या किसी भी अधिकारी या नेता से संबंध रखता हो या खुद हो वही। आगे कहते हैं, स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। हमने अध्याय एक में पढ़ा था, बच्चों आपको याद हो तो, कि जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ये तीनों की शक्तियों में बंटवारा हुआ हुआ है। तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं और कोई भी किसी दूसरे के काम में दखलअंदाजी नहीं करेगा। और जो अदालतें हैं वो सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। वे ना ही सरकार की ओर से काम करती हैं, वे स्वतंत्र तरीके से खुद से काम करती हैं और वे सरकार के अधीन भी नहीं है। उन्हें सरकार को किसी बात की जवाबदेही नहीं करनी है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसके लिए, ताकि शक्तियों के बंटवारे के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में भी सरकार की कोई दखलअंदाजी ना हो, उनकी नियुक्ति भी बिना सरकार की दखलअंदाजी के हो, ताकि बाद में वे भी किसी भी तरह सरकार का पक्ष ना ले सके और एक बहुत ही इक्वालिटी और एक समानता के नजरिए से सबके विवादों को हल करें। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार कोई न्यायाधीश बन गया तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उसको हटा नहीं सकते, सरकार उसको हटा नहीं सकती। वो इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह का जो है असमानता ना फैले और कोई भी अन्याय ना हो किसी के साथ। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है आम नागरिकों के लिए भी, क्योंकि जब भी हमें लगेगा कि हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वो हमारी मदद करेगी। और ये ध्यान रखती है न्यायपालिका हमेशा कि विधायिका और कार्यपालिका अपने ताकतों का दुरुपयोग ना करें, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में तीन अलग अलग स्तरों पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है या अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। देखिए, हमारे देश में कैसे संरचना बनी हुई है अदालतों की, वो इस तरह कि सबसे पहले देश जो है हमारा उसकी सिर्फ एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में स्थित है, और उनके जो मुखिया होते हैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया हैं। उनके बाद नंबर आता है जो जितने भी राज्य हैं उनकी सर्वोच्च, उस राज्य में जो सबसे बड़ी सबसे ऊंची न्यायालय है वो होता है उस राज्य का उच्च न्यायालय, उसे कहा जाता है। हर एक राज्य को अपना एक उच्च न्यायालय मिला हुआ है। उस उच्च न्यायालय के बाद नंबर आता है हर जिले, हर शहर या हर तहसील की अपनी अपनी एक अदालत होती है, जिन अदालतों को कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत, और लोगों का काम सबसे पहले वही होता है। मुझे अगर किसी विवाद में, मुझे कोई विवाद है, मेरे किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है और मुझे अपनी याचिका दायर करनी है, तो मैं सबसे पहले अपने जिले की, अपने शहर की, अपनी तहसील की उस जिला अदालत में जाऊंगी। वहां अगर मुझे मेरा जो है हल नहीं होता विवाद और मुझे न्याय नहीं मिलता, तो फिर मैं उच्च न्यायालय जाऊंगी अपने राज्य की सर्वोच्च अदालत में, और अगर वहां भी मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं देश की सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती हूँ। नीचे देखिए, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए चित्रों को भरें। तो ये बहुत आसान है, मैंने बताया सबसे ऊपर कौन सा आएगा, देश की सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय जो कि हर राज्य का अलग अलग है, और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत जो कि हर जिले की अपनी अपनी है। अगले प्रश्न पे आप देखें, उच्च न्यायालयों की स्थापना जो चित्र के बारे में लिखा है वो पढ़ते हैं। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, तीन प्रेसिडेंसी शहर थे अंग्रेजी शासन में, जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास, सबसे पहले वहां उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1862 में। कहां कहां, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1967 में हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय जो है हमारा, उसका गठन, दिल्ली के उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1967 में। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारी राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ चार पूर्वोत्तर राज्यों, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। किन किन के लिए, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, चार राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। कहाँ, गुवाहाटी में। और आगे लिखते हैं कि 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। यहाँ 2019 से जो हमारा एक राज्य है आंध्र प्रदेश, उसकी कैपिटल, उसका जो कैपिटल है वो अमरावती है, और दूसरा है हमारा तेलंगाना, उसकी राजधानी या कैपिटल है हैदराबाद। इनमें अलग अलग उच्च न्यायालय रखे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच हो सके उन उच्च न्यायालयों की। तो उन उच्च न्यायालयों की खंडपीठ या बेंच जिसे कहते हैं, वो और राज्य के अन्य हिस्सों में भी बनाई गई है। मद्रास का उच्च न्यायालय, पटना का उच्च न्यायालय और कर्नाटक का उच्च न्यायालय, इन तीनों के चित्र गिवन है, प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। आगे लिखते हैं, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हमें निचली अदालत में लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम ऊंची, उससे ऊपर के लेवल की अदालत में जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने ही होंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। एक अब उदाहरण हम पढ़ेंगे, जिसमें जो दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार, एक आम नागरिक थे, इनका एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। इसमें हम देखेंगे कि कैसे वे निचली अदालत में उन्होंने पहले, सबसे पहले याचिका दायर की और वहां से वो सर्वोच्च न्यायालय तक गए। तो 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा के अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही हैं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग यह थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। ये देखिए, इस मामले के बारे में, ये मामला है 2 दिसंबर 1980 में, बहुत दर्दनाक मामला है और ऐसे ना जाने कितने मामले रोज हमारे देश में होते हैं जो कि कभी कभी न्यायालयों तक पहुंच भी नहीं पाते क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है आज भी गाँव और बहुत ही पिछड़े हुए इलाकों में। तो ये 1980 में 2 दिसंबर को सुधा नाम की एक महिला थी, उनके अस्पताल में मौत हो गई थी। क्यों? क्योंकि वे जल गई थी और उनका जब मुकदमा उनके भाइयों ने, घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया तो निचली अदालत में सबसे पहले मुकदमा दायर होगा, है ना। तो जो पड़ोसी थे उनसे जब गवाही मांगी गई, जब मुकदमा चलता है तो जो पूरा प्रोसेस है उसमें गवाही, जो गवाह होते हैं वो बताते हैं उस मुकदमे के बारे में कि उन्होंने क्या देखा। तो पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, हमने देखा था कि उनकी साड़ी जल रही थी और वो, हमने फिर उन्हें कंबल में लपेटा, एक बोरे में लपेटा कि उन आग बुझाई, उनके ऊपर आग लगी हुई थी। तो सुधा ने, जो जल रही थी, उन्होंने पड़ोसियों को बताया कि उसकी सास ने और उसके पति ने, लक्ष्मण कुमार ने ही उस पर आग लगाई है। तो ये सब उन्होंने अदालत को बताया और वो सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो लक्ष्मण और उसके परिवार वाले थे वो चाहते थे कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बहुत भारी रकम, पैसे मिले, रुपए दिए जाएं, एक स्कूटर दिया जाए और एक फ्रिज दिया जाए। दहेज की मांग उन्होंने की थी। तो उन्होंने अपने बचाव में कहा, लक्ष्मण और उसकी माँ ने अदालत में, कि नहीं, सुधा दूध गर्म कर रही थी तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। तो फिर सारे बयानों और साक्षियों को देखकर न्यायालय ने यह फैसला लिया कि जो लक्ष्मण है और उसकी माँ है और जो सुधा के जेठ हैं यानी लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, वो सब दोषी हैं और उन तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। तो 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। अब देखिए, निचली अदालत ने तो दोषी ठहराया था उन्हें, फिर वे, अब उन्हें मौत की सजा मिल गई तो वे मानते ना, तो उन्होंने कहा कि अब हम इससे ऊपरी अदालत में अपनी याचिका दायर करेंगे, लक्ष्मण और उसकी मां ने सोचा। तो 1983 में नवंबर महीने में इन्होंने जो है उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। वहां पे सारे तर्क सुनने के बाद जो वहां के न्यायाधीश थे उन्होंने ये कह दिया कि जो दुर्घटना है, उनका ये निर्णय था कि जो दुर्घटना है वो मिट्टी के तेल से जलने के कारण हुई है क्योंकि वो मिट्टी के तेल का जो स्टोव होता है उस पर काम कर रही थी, तो इसमें ये लोग दोषी नहीं है, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा, उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने, प्रदर्शन और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। अब ये सब 1980 के दशक में चल रहा है और तभी आपको याद होगा हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था कि महिला आंदोलन चल रहा था इस दशक में और दहेज हत्याओं के खिलाफ बहुत भारी मात्रा में महिलाएं विरोध कर रही थी कि दहेज के कारण जो हत्याएं होती हैं उनके खिलाफ जो अदालतें हैं उन्हें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए, पर जो अदालत है वो दंडित ही नहीं कर रही है दोषियों को। इसके खिलाफ उन्होंने बहुत आंदोलन किया और इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नाम का संगठन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि अब इसके खिलाफ आपको कुछ करना ही चाहिए कि जो दोषियों को दंडित नहीं किया जा रहा है इसके खिलाफ। फिर 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई शुरू कर दी। इन्होंने इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने जो संगठन है इन्होंने अपील दायर की थी सर्वोच्च न्यायालय में सुधा के केस के लिए कि इन्हें बरी नहीं किया जाना चाहिए कि दोषी हैं। तो फिर 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शुरुआत की सुनवाई शुरू की इस अपील पर। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को तो दोषी पाया लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना सारे तर्क सुनने के बाद अपना निर्णय ये लिया कि जो लक्ष्मण और उसकी माँ है वो दोषी हैं पर जो सुभाष चंद्र जो लक्ष्मण के बड़े भाई हैं वो दोषी नहीं हैं क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो लक्ष्मण और उसकी माँ है उन्हें दोनों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो ये उच्च न्यायालय के निर्णय से अलग था और चूंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था तो हर एक न्यायालय हर एक निचली अदालत को ये मानना ही पड़ेगा। अब इधर लिखा है चित्र के बगल में अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिविल जज न्यायालय आदि नामों से भी बुलाया जाता है। नामची दक्षिण सिक्किम के जिला अदालत का चित्र और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आइजोल मिजोरम बेंच इनके चित्र आपको यहाँ प्रस्तुत हैं। अब आगे है कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो विधि व्यवस्था है उनकी विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। अभी कह रहे हैं कि जो दहेज हत्या का मामला था ये समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और यह आपराधिक या फौजदारी कानून जो है उसका उल्लंघन है जब भी ऐसा अपराध किया जाएगा। फौजदारी कानून के अलावा जो हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ है उसके संबंधित मामले जो हमारी दीवानी या कानून व्यवस्था जो दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। जो हमारी विधि व्यवस्था है वो हमारे दीवानी कानून को या जो सिविल लॉ से संबंधित मामले हैं उनको भी देखती है। तो क्या है इन दीवानी कानून और सिविल लॉ एक ही को कहा जा रहा है। दीवानी कानून और सिविल लॉ एक ही है। दीवानी कानून और फौजदारी कानून इनके बीच फर्क क्या है ये अब हम इस तालिका के जरिए पढ़ेंगे। फौजदारी कानून के बारे में पहला ही लिखते हैं ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी दहेज के लिए औरत को तंग करना हत्या आदि जिन्हें कानून में अपराध माना गया है वो सब क्रियाएं जब होंगी तो वो फौजदारी कानून के अंतर्गत उन चीजों को लिया जाएगा जैसे कि चोरी या दहेज के लिए औरत को तंग करना हत्या करना आदि। दीवानी कानून क्या कहता है इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री चीजों की खरीदारी किराया तलाक आदि से संबंधित विवाद जो भी किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना कर रहा हो उस स्थिति में दीवानी कानून संबोधित होता है। जैसे कि किसी की जमीन की बिक्री चीजों की खरीदारी तलाक किराया आदि से संबंधित जो विवाद होते हैं वो दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी कानून के लिए लिखते हैं इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और दीवानी कानून में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। फौजदारी में तो जरूरी है कि पहले एक FIR दर्ज कराई जाए जिसे रिपोर्ट या प्राथमिकी कहते हैं। पुलिस के पास एक FIR दर्ज कराई जाए फिर पुलिस उस अपराध की जाँच करेगी और उसके बाद अदालत में केस फाइल करेगी। अगर वो जो केस आया है पुलिस के पास वो सही हुआ तो फिर वो जांच करने के बाद पाती है कि हाँ केस सही है फिर वो अदालत में केस को फाइल करेगी। पर दीवानी कानून में जो प्रभावित पक्ष है उसकी ओर से न्यायालय में ही डायरेक्ट एक याचिका दायर की जाएगी और अगर किसी जो भी व्यक्ति विशेष है जिसको भी परेशानी है चाहे वो किराएदार हो चाहे मकान का मालिक हो या कोई भी जो भी मुकदमा दायर करना चाह रहा है वो सीधा जाके न्यायालय में अपनी याचिका दायर करेगा। फौजदारी के बारे में लिखते हैं अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। इसमें ये लिखते हैं कि अगर जो व्यक्ति है वो दोषी पाया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा या उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दीवानी कानून में लिखते हैं, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। दीवानी कानून में ये कह रहे हैं कि जो अदालत है वो ये कोशिश करती है कि जो विवाद है उसे हल किया जाए, और एक जो है ये कहती है कि एक राहत की व्यवस्था मुहैया कराती है। जैसे अगर उदाहरण लें कि एक किराएदार और मकान मालिक के बीच का विवाद है तो अदालत ही कहेगी कि तुम जो है ये घर छोड़ दो, इनका पूरा किराया जो बकाया है वो दे दो इन्हें पैसे और इनका मकान खाली कर दो। तो इस तरह हमने देखा फौजदारी और दीवानी कानून के बीच क्या फर्क है। तो फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें। पहला है उल्लंघन का विवरण। तो कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं, तो ये जो है कानून की शाखा कौन सी होगी? फौजदारी कानून, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जो कानून में अपराध माना गया है वो हो रहा है। और अपनाई जाने वाली क्रिया क्या होगी कि पहले FIR दर्ज होगी, पुलिस जांच करेगी और फिर अगर सही पाया गया तो अदालत में केस फाइल होगा। नीचे है, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। एक किराएदार को मजबूर किया जा रहा है कि वो मकान खाली कर दे, तो वो जो है दीवानी कानून के अंतर्गत, कानून की शाखा जो है वो दीवानी कानून है, दीवानी कानून के अंतर्गत ये विवाद आएगा और वो न्यायालय में याचिका दायर करेगा। पहले ये प्रक्रिया होगी, फिर जो न्यायाधीश हैं वो उन दोनों के बीच सुलह कराएंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। इस प्रश्न का हम उत्तर पढ़ेंगे, क्या हमारे व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। यहाँ हम ये पाते हैं कि हाँ, सबको अधिकार है कि कोई भी भारतीय नागरिक अदालत में, न्यायालय की शरण में जा सकता है कोई भी विवाद से या अन्याय से ग्रस्त होने पर। इसका अर्थ यह है कि जो अदालत है वो एक न्याय मांगने का अधिकार देती है सबको। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हमें मौलिक अधिकारों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर हमें कभी भी लगे कि हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम बिल्कुल बिना किसी देरी के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपना हक मांग सकते हैं। पर वास्तविकता ये है बच्चों कि जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है ये एक तो बहुत देर में पूरी होती है, थोड़ा टाइम लगता है चीजों में, और दूसरी बात ये कि पैसा लगता है। अब जो बेचारा एक दिहाड़ी डेली 100-200 रुपए, 300 रुपए की दिहाड़ी करके, मजदूरी करके अपना पेट भरता है, ऐसा गरीब मजदूर है, अगर उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो कैसे जाए न्यायालय में, क्योंकि उसके पास ना तो इतना वक्त है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहे, ना ही उसके पास इतना पैसा है। वो तो खुद ही अपनी 2 रोटी दिन की खाने के लिए काम कर रहा है, उस एक दिन काम नहीं करेगा तो उसे उस दिन खाना नहीं मिलेगा। उसके तो आज की रोटी भी उसके आज के काम करने के पैसों पर निर्धारित है, तो इसलिए वो कहाँ से जाए न्यायालयों में। तो गरीब लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंसाफ पाना, क्योंकि ना उनके पास इतना समय है ना ही इतना पैसा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण लिखा गया है, जो भी लिखा है मैं समझाती हूँ कि 1900 दशक में ये परेशानी ना हो, हर गरीब हर इंसान को न्याय मिले, उसकी मांगे पूरी हो, उसे उसका अधिकार मिले, इसके लिए क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में PIL की व्यवस्था विकसित की, जनहित याचिका बोलते हैं इसको, PIL। इसके तहत क्या हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष जिस जो परेशान है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो अगर मजदूर है, गरीब है, वो नहीं आ सकता खुद से, वो नहीं अपना केस लड़ सकता है, याचिका दायर कर सकता है, तो उसकी जगह कोई और व्यक्ति उसका याचिका दायर कर सकता है, उसकी परेशानी न्यायालय में बता सकता है। और न्यायालय ने इतनी पारदर्शिता रखी है कामों में और इतना सरल बना दिया है अब न्याय के काम को और हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचे इस बात को, कि अब हर व्यक्ति, हर एक ग्रामीण, हर एक मजदूर, हर एक गरीब इंसान भी अपनी परेशानी बता सकते हैं न्यायालय तक, कैसे, PIL के जरिए, जिसमें कोई और व्यक्ति या कोई और समूह उनकी परेशानी की याचिका दायर कर सकते हैं न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम पे आप पत्र या टेलीग्राम भी भेज सकते हैं अपनी परेशानी लिखकर, और उसे भी जनहित याचिका माना जाएगा। और इस जनहित याचिका के तहत बहुत से अमानवीय और जो अलग अलग विवाद थे वो हल किए गए हैं, जैसे अमानवीय श्रम, बंधुआ मजदूरों का अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाई गई, बिहार में जो मुजरिम सजा काट चुके थे उसके बावजूद उन्हें जेल में रखा जा रहा था तो उन्हें रिहा कराया गया, तो ऐसे जितने भी मामले हैं बहुत सामने आए हैं जिनसे बहुत लोगों को मदद मिली है PIL के थ्रू, यानी PIL के जरिए, जनहित याचिका के जरिए। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन, मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाई और दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। क्या आप जानते हैं जो आपको मिड डे मील मिलता है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, जो दोपहर में भोजन दिया जाता है बच्चों को, वो भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुआ था। जनहित याचिका दायर की गई थी और फिर न्यायालय ने ये फैसला लिया था कि हाँ, बच्चों को खाना मिलना चाहिए दोपहर का भोजन स्कूल में। अब चित्र एक है, जो चित्र एक इधर चित्र प्रस्तुत है ना, तो हम पहले चित्र एक देखेंगे, उसके बारे में लिखा है। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। देखिए, सूखा पड़ा था राजस्थान में और उड़ीसा में 2001 में, उस वजह से भोजन का अकाल हो गया था, लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। चित्र दो में सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था, और देखिए सरकारी जो गोदाम है वो अनाज से भरे पड़े हैं और चूहों ने खाया था वो गेहूं। चित्र तीन में इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य के इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया है कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे, तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। जो तीसरा जो चित्र है उसमें उन्होंने दिखाया है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम से एक संगठन ने ये जनहित याचिका दायर की थी सर्वोच्च न्यायालय में, और उन्होंने कहा था, फिर याचिका में कहा गया था कि जो संविधान का अनुच्छेद 21 है उसके तहत जो जीवन के मौलिक अधिकार है उसमें भोजन का अधिकार भी मिलता है हमें, तो इसलिए मिड डे मील जो है वो उस भोजन के अधिकार के तहत, मिड डे मील वाला बाद में है, इस चित्र में है कि भोजन के अधिकार के तहत हमें भोजन मिलना चाहिए, और राज्य ये नहीं कह सकते कि उनके पास भोजन की कमी है या संसाधन की कमी है, क्योंकि सरकारी गोदामों में अनाज भरा पड़ा है और वहां सड़ रहा है, वो उसे चूहे खा रहे हैं, तो वो लोगों को दिया जाना चाहिए। चित्र चार में आप देखिए, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दो खाकों को भी नियुक्त किया। तो देखिए, चौथी जो चित्र गिवन है, चौथा, उसमें हम देखते हैं कि फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया था कि हाँ ठीक है, हम हर राज्य को ये आदेश देते हैं, हर सरकार को ये आदेश देते हैं कि वो तो रोजगार पैदा करे, राशन की सारी दुकानों पर सस्ती दरों पर राशन दे, गरीब लोगों को और सबको, ताकि खाना मिल सके, सबको भोजन पर्याप्त रूप से मिल सके कम दरों पर, कोई भी वंचित ना रहे भोजन से, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार। और जो बच्चे हैं उन्हें स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाए। और ये सब काम सही तरह से हो रहा है या नहीं, इसके लिए भी सरकार ने 2 खाद्य आयुक्तों को नियुक्त किया, जो इस काम की कार्यवाही को देखकर रिपोर्ट भेजेंगे न्यायालय में। अब आगे देखिए, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो हमने ये देखा कि जो अदालत है उसका एक तो निर्णय सर्वोपरि है, और वो संविधान के अनुच्छेदों की, संविधान के सिद्धांत और मूल्यों की व्याख्या अपने तरीके से करती है। जैसे जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, तो न्यायालय ने कहा कि इसमें भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए मिड डे मील की ये योजना शुरू हुई और बच्चों को और लोगों को सस्ती दरों पर भोजन मुहैया होने लगा और बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील मिलने लगा। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो पहले हम ये देखेंगे कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई का क्या विवाद था, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे हुआ। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के आधार अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 21 में जो हमें जीवन का अधिकार मिला है, उससे मतलब ये बस मतलब नहीं है कि हाँ हम जीवित हैं या हमें हम मृत्यु हो गई तो मर गए। यहाँ जीवन का अर्थ बहुत व्यापक है। हम जिएंगे कैसे? जब हमें रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा, हमें भोजन पर्याप्त रूप से मिलेगा, पानी मिलेगा, आजीविका होगी, हमारे पास नौकरी होगी, पैसा कमाने का साधन होगा ताकि हम अपना खाना ये सब खरीद पाए, अच्छे घर में रह पाए, एक हमें ढकने के लिए सर पे छत हो, आदि आदि। तो इन सब के तहत जो है फिर हमें अधिकार है कि आजीविका का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है इस व्याख्या के तहत। तो कोई भी व्यक्ति जीने का जब अधिकार मांगता है तो उसका मतलब है कि उसे आजीविका का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। अब कोई गरीब बेचारा एक झुग्गी बस्ती में रहता है और आप उसकी झुग्गी बस्ती उजाड़ दें तो उसके लिए आजीविका के जो उसके साधन है वो भी फौरन नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए आप उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो भी पटरी या झुग्गी बस्तियों वाले लोग होते हैं वो एक्चुअली कैसे बनते हैं? वो फुटपाथ पर या पटरियों पर अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा करते हैं और वहीं अपना सो जाते हैं, वहीं अपनी एक छत डाल लेते हैं घास फूस की और वही उनकी झुग्गी बन जाती है। अब अगर सरकार ये कह दे कि झुग्गी और झोपड़ियों को सबको हटा दो, तो इस तरह तो आपने उनका आजीविका भी छीन ली उनसे, अब वो अपना काम धंधा कहाँ करेंगे, और इस तरह आपने इनडायरेक्टली उनका जीवन ही उनसे छीन लिया, क्योंकि इस तरह जब वो आजीविका से वंचित हो जाएंगे तो अंततः वो जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। फिर इसी मामले में अब ने लिखा था, किताब में ये लिखा है कि कुछ फैसले ना अदालत के ऐसे भी होते हैं जो आम नागरिकों के खिलाफ होते हैं, जो उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। जैसे जब पहले जो फैसला था वो अलग था, पर अब अदालत ने ये फैसला दे दिया कि जो झुग्गी वासी हैं उन्हें झुग्गी झोपड़ियों से बेदखल कर दिया जाए, और इस तरह अब ना उन्हें सब शहर के वासी घुसपैठियों की तरह देखने लगते हैं। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमों की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। तो एक तो ये परेशानी, इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि इस वाले विवाद में उन्होंने उदाहरण दिया है जो ये ओल्गा टेलिस बना मुंबई नगर निगम का मुकदमा था, इसमें उन्होंने ये उदाहरण दिया है इसके तहत कि कैसे कभी कभी अदालत के कुछ फैसले लोगों के लिए नुकसानदेह होते हैं। आगे लिखते हैं कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह भी है कि मुकदमों की सुनवाई देर से होती है, कई साल लगा देते हैं मुकदमों की सुनवाई, मुकदमों का हल निकलने में कई साल लग जाते हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, और इसलिए कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, जल्दी से जल्दी मुकदमों की सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी उनका हल निकले, इसी में समाज की भी और उस आम नागरिक की भी भलाई होती है जिसका विवाद है। भारत में न्यायाधीशों की संख्या लिखी गई है, उच्चतम न्यायालय के स्वीकृत पद और कार्यरत और रिक्त, इस तरह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और अधीनस्थ न्यायालय, इन तीनों का ही वर्गीकरण किया गया है और इनकी संख्या लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चित्र के लिए लिखा है, इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी PSPAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया फोटो। तो देखिए ये कब का था, ये जो याचिका दायर थी, ये जो पहली याचिका दायर हुई थी, ये मुकदमा एक तरह से जो शुरू हुआ वो कब से चल रहा था समझ लो, 1987 से, और कब इसका फाइनल रिजल्ट आया, कब इसका हल निकला, 2018 में। आप देखिए कितना वक्त लगा एक मुकदमे के सॉल्यूशन में, एक मुकदमे के हल में। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है, ये चीज भी गलत है हमारे हमारी न्यायपालिका की के मुकदमों में इतनी देरी लगती है उन्हें हल करने में, तो यहाँ भी काम होना चाहिए। इसके बावजूद और ये कैसे होगा, न्यायाधीशों की जो संख्या है उसे बढ़ाकर, क्योंकि कई अदालतों में न्यायाधीश ही नहीं है, कहीं वकील ही नहीं है, तो इन सब की रिक्त जो है उनको भरकर। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। पर यह फिर भी बहुत अच्छी बात है हमारे देश की कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर भी अंकुश लगा के रखती है, उनके कार्य पर नजर रखती है और पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ हर एक व्यक्ति तक न्याय की को पहुंचाती है और अपनी भूमिका अदा करती है एक अच्छे समाज के निर्माण में। अभ्यास देखें तो पहला प्रश्न आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो जो हमने नेता वाला उदाहरण देखा था, तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने पैसे और अपनी शक्ति के बल पर अपने पक्ष में न्याय को खींच सकता है, अन्याय कर सकता है, अपने पक्ष में जो है वो निर्णय ला सकता है, इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। दूसरा है अध्याय एक में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, फिर उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से क्यों जुड़ा है? क्योंकि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो न्याय के लिए है। जब किसी भी मौलिक अधिकार का हमारे उल्लंघन होगा तो हमें न्याय चाहिए होगा, तो न्यायिक समीक्षा वहां जरूरी होगी। जो न्यायालय वो समीक्षा करेगा और हमें न्याय दिलाएगा। तीसरा है कि नीचे तीनों स्तरों के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया, और अपने विद्यार्थियों अलग दूसरे विद्यार्थियों के साथ अपने जो आपका जवाब है उसको मिलाइए। तो सर्वोच्च पहले निचली अदालत का देखते हैं। निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और जो जेठ है सुभाष, तीनों को ही तीनों को दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने क्या किया था कि उन्होंने बरी कर दिया था तीनों को, और सर्वोच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय उसने सुभाष को बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे, और जो माँ थी और लक्ष्मण था उन दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी। चौथा प्रश्न है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए, जो वक्तव्य सही है उस पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है उनको ठीक कीजिए। आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। बिल्कुल सही है, जो आरोपी थे वही उच्च न्यायालय लेकर गए थे क्योंकि निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार ठहराया था। अब ख है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए, ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो निर्णय होगा वो हर निचली अदालत को मानना पड़ेगा, और चूंकि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आता है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। तीसरा है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय हैं तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो निचली अदालत में जा सके। हमने बताया सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि होती है और उसका जो निर्णय है वो हर निचली अदालत को मानना पड़ेगा। आप निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जा सकते हैं पर ऊपरी अदालत से निचली अदालत में नहीं जा सकते। जो ऊपरी अदालत ने फैसला कर दिया वो निचली अदालत को मानना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? हाँ, क्योंकि जो गरीब लोग थे जिनके पास ना इतना वक्त है ना इतना पैसा कि अपने न्याय की मांग के लिए वो अपने दिन रात अपना पैसा लगाए, अपने वक्त लगाएं, याचिका दायर करें, उनके पास है ही नहीं इतना पैसा और वक्त, पर उनके साथ अन्याय ना हो, उनकी मांगे भी सुनी जाएं और उनके भी जो विवाद है उन्हें हल किया जाए, इसके लिए जनहित याचिका एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इससे हर तबके के और हर पिछड़े वर्ग को, हर गरीब इंसान को भी अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है और इंसाफ मिलता है। छठा क्वेश्चन है, ओल्गा टेलिस बना मुंबई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसलों के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए इस बयान से जजों का क्या मतलब था, क्योंकि अगर हम किसी की आजीविका छीन लेंगे, बच्चों आप देखिए, अगर हम किसी की नौकरी उससे छीन लेंगे, जिस तरह जो उसका पैसा कमाने का स्रोत है हम वही उससे छीन लेंगे, तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा? और आज की दुनिया में अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर आप खाना कैसे खरीदेंगे, खाएंगे कैसे, अपना कपड़ा कैसे पहनेंगे, और छत, एक आपको छोटा सा ही सही घर चाहिए या आपको झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो कैसे लेंगे? तो आज के समाज में जीवन का अधिकार यानी आजीविका का अधिकार, क्योंकि आजीविका के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। फिर सातवां है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। ये आप कहानी बना सकते हैं अपने आप। आठवां है, अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। वाक्य आप बना सकते हैं, मैं शब्दों का अर्थ आपको समझा दूंगी आसान भाषा में। नौवां है, यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखिए। बिल्कुल सही, क्योंकि भूखे पेट भरे गोदाम, वहां लोग तो भूख से तरस रहे थे। जो इन्होंने दिखाया कि ओडिशा और राजस्थान में सूखा पड़ा था 2001 में, तो लोग तो जो है वहां भूख से तरस रहे थे और गोदामों में अनाज भरा पड़ा था। तो ये वही बात है कि भूखे हैं पेट और भरे हैं गोदाम, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि इन भोजन पर आम नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का हक है, तो ये मुहैया होना चाहिए, ना कि सड़ना चाहिए गोदाम में। और ये बगल में एक चित्र बनाए, भूख से मौत जिम्मेदार कौन, ये पोस्टर मेकिंग है। आप भी अपने हिसाब से एक पोस्टर बना सकते हैं और सरकार के जो दायित्व हैं भोजन के अधिकार के बारे में उनकी सूची बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब शब्द संकलन हम देखेंगे, बरी करना। जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी करना कहा जाता है। जब किसी को छोड़ दिया जाता है कि हाँ तुम जो हो निर्दोषी पाए गए हो, तुम्हारा दोष नहीं है इस मुकदमे में, तो तुम्हें बरी किया जाता है, उसे बरी करना कहते हैं। अपील करना यानी अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे अपील कहते हैं। जब हम निचली अदालत के किसी निर्णय से संतुष्ट ना होकर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो उसे कहेंगे हम कि हम अपील कर रहे हैं। मुआवजा का अर्थ है किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा। कोई नुकसान हुआ है हमारा तो उस जो उसकी भरपाई के लिए हमें पैसा मिलेगा वो मुआवजा कहलाता है। बेदखली यानी अभी लोग जिस जमीन मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाए, जिस घर में जिस मकान में हम रह रहे हैं अगर हमें वहां से हटा दिया जाए तो हम कहेंगे हमें बेदखल कर दिया वहां से, तो उसे बेदखली कहेंगे। उल्लंघन यानी किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। किसी भी कानून को तोड़ना या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना यही कहलाता है उल्लंघन, यानी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करना या कानून को तोड़ना यानी उनका उल्लंघन करना। आशा आपको समझ आया होगा।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।